हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने कॉल काट दिया था। रुहान बस उस फोन की तरफ देखता रह गया। उसे बहुत बुरा लगा था अनाही का ऐसे सामने से बिना उसकी बात सुने कॉल काट देना। उसने गहरी सांस ली और अपना फोन टेबल पर पटकते हुए चेयर पर बैठकर बोला, इंसान को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मैडम जी की अपनी एक लाइफ है, मैं उसमें इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता जितना देने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलकर रुहान वापस अपने काम में लग गया। हालांकि उसके दिलो दिमाग में फिर भी अनाही ही घूम रही थी। वो बस अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहें नाम कोशिश। वहीं दूसरी तरफ अनाही ने सारा सामान खरीदने के बाद शॉप पर बिलिंग की और खुद टैक्सी करके निमानी हाउस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने फिर वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने फोन उठाते हुए कहा, अनाही बोलो, कोई काम था? हो गई तुम्हारी शॉपिंग? अनाही ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर CEO मुझे छुट्टी देने के लिए। और हाँ, मेरी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं वापस ऑफिस नहीं आ रही हूँ, मैं निमानी हाउस जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। वेदांत ने हाँ बोलते हुए फोन रख दिया और वापस अपने काम पर लग गया। विहा ने जैसे ही देखा वेदांत ने किसी से बात की है, उसके कान खड़े हो गए थे, पर अनाही का नाम सुनकर फिर शांत हो गई। अचानक विहा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वेदांत मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपका काम कब तक होगा? पिछले 2 घंटे से आप बस इस लैपटॉप में घुसे हुए हैं, आसपास भी इंसान हैं, उनको भी देख लो। शायद विहा को अब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी जलन महसूस हो रही थी कि कैसे वो उसके पति का ध्यान 2 घंटे तक खुद पर रख सकती है जबकि विहा सामने ही बैठी हो। वेदांत ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखते हुए विहा को देखकर बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, जी बीवी जी, बोलिए क्या बात करनी है? और बच्चे, जब काम करते हैं तो पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होता है तो मुझे लगता है मैं अपने काम के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, जो मुझे मंजूर नहीं है। इतना बोलकर वो चेयर से उठा और वापस सोफे पर आकर विहा के पास बैठ गया। उसने विहा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी उंगलियों को देखा, जो 2 घंटे तक पेन पकड़ने से थोड़ी लाल हो गई थीं। वेदांत ने उंगलियों को हल्के हाथों से रब करते हुए कहा, बताओ क्या पूछना है तुम्हें मुझसे, जिसके लिए इतनी तेज आवाज लगाई है मुझे? विहा ने अपने होठों पर जीभ फेरकर अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश की और फिर धीरे से वेदांत का चेहरा देखते हुए बोली, दी शॉपिंग करने गई है। तो तुम मुझे इतना ज्यादा नोटिस कर रही थी कि तुम्हें ये भी पता चल गया मैं किससे क्या बात कर रहा था? विहा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मेरे पति हैं, आप पर नजर रखना मेरा धर्म है। उसकी ये बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। तो वहीं विहा ने जल्दी से कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए, आपने मुझे गिफ्ट दिया उसमें ड्रेस थी और वो मेरे गाँव रह गई है। अब मुझे भी शॉपिंग पर जाना है और अपने जैसी ड्रेस मेरे लिए वहाँ भेजी थी। हम वैसे ही बहुत सारी ड्रेस खरीद कर लाएंगे जिन्हें पहनकर मैं ऑफिस आऊँगी। इतना बोलकर विहा तो सपने में देखने लगी थी कि वो मॉडर्न ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगेगी। उसे ऐसा करता देख वेदांत ने एक हाथ से उसका चेहरा थामा और फिर पूरी शिद्दत से उसका माथा चूमते हुए बोला, जो ऑर्डर मोहतरमा, पर आज के लिए तो काफ़ी लेट हो गई है, हम कल मॉर्निंग में चलते हैं शॉपिंग के लिए और तुम्हारे कॉलेज में मैं बात कर लूँगा हॉलिडे के लिए और कल मेरा काम भी रोक दूँगा क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से मैं ओवर टाइम ही कर रहा था क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। विहा ने आंखें छोटी करके कहा, और मेरे होते हुए क्या होता है आपके पास करने के लिए? आप ऐसे ही काम करते हो जैसे रेगुलर करते हो। वेदांत ने आंखें बंद करते हुए अपना सर विहा के सर से जोड़ते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरे पास तुम्हारे 100 टैंट्रम्स होते हैं जिनको मैं सॉल्व करता हूँ। तुम्हारी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तुम्हारी बहुत सारी डिमांड होती हैं और भी बहुत कुछ होता है जो तुम नहीं समझ सकती हो। विहा ने आंखें छोटी करके कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं समझ सकती हूँ, बताइए, फॉर एग्जाम्पल। ये सुनकर वेदांत मुस्कुरा उठा और उसने विहा के गाल पर अपने अंगूठे को रब करते हुए कहा, जैसे मैं तुम्हें बहुत देर तक देख सकता हूँ, वो भी मेरे लिए काम ही है, और जब तुम यहाँ नहीं थी तब मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था तो मेरा वो सारा टाइम काम में ही निकल रहा था। विहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही जूली ने दरवाज़ा नॉक किया। हाँ, दरवाज़ा अभी भी उतना ही खुला था जितना सुबह खुला हुआ था, पर इस बार जूली ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, वो बाहर से ही दरवाज़ा नॉक कर रही थी जबकि उसे देख रहा था वेदांत और विहा एक साथ बैठे हैं। वेदांत ने कम इन कहा और विहा को थोड़ा सा खुद से दूर कर दिया ताकि वो कंफर्टेबल होकर बैठ सके। जूली ने अपने मन ही मन झल्लाते हुए कहा, पता नहीं है सर ने काम किया भी है या नहीं, या फिर पूरे दिन अपनी इस बच्ची जैसी दिखने वाली पत्नी को संभाल रहे थे। वेदांत ने जूली के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन नोट किए थे और वो अपने माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या हुआ जूली, तुम क्यों परेशान हो और मन ही मन क्यों मुझे गालियाँ दे रही हो? जूली ने जल्दी से घबराते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस वो फाइल लेने आई थी, आपने चेक कर ली होगी अब तक तो। वेदांत ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मैंने उसे चेक कर लिया है, ले जा सकती हो तुम। ये सुनकर जूली तेज कदमों से टेबल तक गई और फाइल लेते हुए उसी स्पीड से केबिन से बाहर चली गई। विहा को बहुत बुरा लगा जूली की इग्नोरेंस देखकर। जूली ने एक बार भी नजर उठाकर विहा की तरफ नहीं देखा था। वहीं वेदांत ने मुड़कर वापस विहा को देखा और इस बार उसके चेहरे पर परेशानी देखकर वेदांत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है टोमैटो, तुम क्या सोचने लग गई हो? विहा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, आप बस अपना क्रेडिट कार्ड संभाल लीजिए क्योंकि कल उसकी लिमिटेशन खत्म होने वाली है। वेदांत को विहा की ये बात समझ नहीं आई और उसके चेहरे पर आई इस उलझन को देखकर विहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कल मैं शॉपिंग जो करने वाली हूँ, मेरे सारे बिल पे करते हुए आपका क्रेडिट कार्ड बेचारा बहुत थक जाएगा। ये सुनकर वेदांत ने मुस्कुराकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, देखते हैं बीवी तुम मेरा कितना खर्चा करवा सकती हो। खा खा। शाम का वक्त था जब निमानी हाउस के डाइनिंग एरिया में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जिग्नेश ने अपना गला सही करते हुए कहा, मेरी अनंत से बात हुई थी, वो इंडिया आना चाहता है, आई थिंक आज रात को उसकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, तो उसे पिक करने के लिए। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वेदांत ने कहा, हाँ मेरी बात हो गई अनंत से, उसने कहा था रात के करीब 3 बजे वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, तब मैं उसे लेने चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये सुनकर माधवी ने खुश होते हुए कहा, कितने दिन हो गए हैं, मैंने अपने बेटे को देखा भी नहीं है, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं उसे, मेरी कल ही उससे बात हुई थी पर उसने मुझे बताया नहीं कि वो यहाँ आना चाहता है। ये बोलते हुए माधवी जैसे ही मायूस हुई, जिग्नेश ने हंसते हुए कहा, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हो, तुम ज्यादा मत सोचो। माधवी ने गहरी सांस लेकर बस हाँ में सर हिलाया।
वहीं उसकी इस मायूसी को देखकर अनाही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक माँ के लिए अपने बेटे से दूर रह पाना बहुत मुश्किल होता है, और तब तो सबसे ज्यादा जब बेटा अपने आँखों के सामने हो, उसके बाद भी उनके बीच अजीब से दीवार खींची हो, इससे तो अच्छा ही था ना। बताइए, कम से कम आपके बेटे आपसे बात तो कर रहे थे, पर कुछ लोगों के कर्मकांड की वजह से कई बार दो माँ बेटे पिछड़ जाते हैं और उन बिचारों को पता भी नहीं होता है इन सब के पीछे असली वजह कौन होता है।